धवला पुस्तक 11वी लेक्चर नंबर 6 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नये जिनेन मिहुं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चौथा खंड इसका नाम है वेदना और उसमें अनियोग द्वार का नाम है वेदना क्षेत्र विधान। दसवीं पुस्तक में हमने द्रव्य विधान देखा था यानी संख्या परमाणुओं की। अब यहाँ वेदना का अर्थ होता है कर्म प्रकृति जो उसका जो द्रव्य है उसकी जो परमाणु है वो कितना क्षेत्र व्याप्ते है उसकी बात यहाँ चल रही थी। तो पहले उन्होंने ज्ञानावरण के उत्कृष्ट पर घटित किया वो किसके होती है तो वो तो महामत्स्य है वेदना समुद्घात के साथ मारणांति भी करता है वगैरह वगैरह। फिर जो उत्कृष्ट है वो सारे अनुत्कृष्ट तो अनुत्कृष्ट में उन्होंने एक एक प्रदेश से घटते हुए सारे विकल्प बताए थे। तो वो हमने देखा था। फिर जघन्य किसके होते हैं प्रश्न पूछा गया था यानी पहले ज्ञानावरण के बाद वेदनीय किसके उत्कृष्ट होती है तो केवली समुद्घात में लिया लोक पुराण में परंतु उसमें अनुत्कृष्ट के भेद एक एक प्रदेश के डिफरेंस से नहीं है। लोक पुराण उत्कृष्ट है तो पहला अनुत्कृष्ट कौन सा है तो प्रतर वाला। दूसरा अनुत्कृष्ट कौन सा है कपाट वाला वो भी पूर्वाभिमुख वाला उसमें भी देखो देखो लोक पुराण ने पूरा व्याप्त है वो सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र। अभी अनुत्कृष्ट में एक प्रदेश कम वाला कोई नहीं होगा कि पूरे लोक में नहीं व्यापा एक ही प्रदेश ऐसा नहीं होगा तो उसके अर्लियर कौन सा प्रतर वाला होगा। अब उसके अर्लियर कपाट वाला अपन कपाट वाले में भी भेद है पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख हाँ तो उसमें भी बड़ी अवगाहना वाला फिर उससे कम अवगाहना वाला एक एक अवगाहना का कम होते थे ना उसके लगातार एक एक से कम नहीं है उसके कुछ बीच बीच में सांतर जिसको कहेंगे निरंतर स्थान वहां नहीं हो गए तो पहले उसके समान कोई उत्तराभिमुख वाला भी बीच में आ जाएगा फिर वो भी बढ़िया होगा उसकी यथायोग्य मिनिमम अवगाहना तक वो ले गए। कपाट के मिनिमम अवगाहना उत्तराभिमुख के बाद जो अनुत्कृष्ट का भेद है वो वेदना समुद्घात वाला वो महामत्स्य लिया दंड को नहीं लिया क्योंकि हाँ वो ज्यादा है क्योंकि वो तो उसकी अवगाहना तिगुणी हो जाती है ना महामत्स्य की वो बहुत बड़ी एरिया 500 गुना 250 योजन वाली है और यहाँ तो केवली का जो दंड भी करेंगे भले 14 जो हाइट वाली है परंतु उसका विष्कम्भ विड्थ कितनी है बॉडी की विड्थ कितनी होगी मैक्सिमम समझे अंगुलों में मापेंगे उसको और वो योजनों में है इसलिए वो अनुत्कृष्ट वहां घटित होता है। फिर उसके बाद वो जो अनुत्कृष्ट के सारे स्थान हमने देखे थे वो घटित होता है ये उसकी बात हो गई। अब ये वेदनी की हो गई वैसे ही अघाती के सभी वैसा ही है जो केवल ज्ञानी के चार कर्म है उसमें ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का भेद हुआ। अब जघन्य की बात पूछ रहे हैं तो जघन्य किसके होता है तो जघन्य जो है सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्तक वो भव का तीसरा समय और आहार खोने का भी तीसरा समय क्योंकि वहां योग जघन्य है तो पहले समय में आयताकार होता है दूसरे समय में समचौकोर होता है तीसरे समय में गोलाकार होता है तो वहां उसकी एरिया सबसे मिनिमम है तो वो सबसे जघन्य है ज्ञानावरण की सभी आठों कर्मों की वही जघन्य उसकी होगी। अब उसमें एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए विकल्प तो ये बढ़ते हुए जैसे अवगाहना के इतने भेद है कि ये दूसरा जो अजघन्य में जो पहला स्थान है वो भी सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त तक की होगा, पर एक प्रदेश बढ़कर वाले को होगा, दो प्रदेश बढ़कर तीन प्रदेश, तो असंख्या स्थान तो उसमें चले, फिर वायु का एक के उसमें आ जाएगा, तेजस का एक आएगा, यानी अवगाहना के जो हमने भेद देखे थे वो सारे उसमें घटित हो जाते हैं, एक 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 प्रदेश से बढ़ते हुए, उसको सारों को हम अजघन्य कहेंगे। अब यहाँ अजघन्य का हिसाब लगा रहे, क्योंकि यहाँ क्या देखी थी बात कि जघन्य अवगाहना कैसी आती है, तो जघन्य अवगाहना आने के लिए भागहार क्या है, तो पहले कहते कि पल्ले का असंख्यातवा भाग है, उसमें घनांगुल को बांट दो, यानी घनांगुल यानी पल्ले का असंख्यात भाग का विरलन करो और घनांगुल उसमें बांट दो, यानी हमारी वो एरिया कितनी है, घनांगुल का असंख्यातवा भाग जो जघन्य अवगाहना है, जो सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना, हम उसको जघन्य अवगाहना कहेंगे, यानी हरेक के ऊपर जघन्य अवगाहना के भेद आ गए, यानी इसका भागहार क्या है, पल्ले का असंख्यातवा भाग। अब इसमें एक प्रदेश बढ़ना है, हम ऊपर का नीचे का विरलन करते हैं ना, यही पद्धति है अभी। अब क्या करना है, नीचे अभी कौन सा विरलन करना, ये जघन्य अवगाहना का विरलन करो, अभी इसको जघन्य अवगाहना समखंड करके दे दो, क्या क्या आएगा हर एक के माथे पर, एक एक आएगा, यानी यहाँ का एक ज निकाला और आगे के इतने में ज में बांट दिया, उसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम ज को हजार कहते हैं तो एक हजार खोल दिया और आगे के हजार में बांट दिया, यानी एक हजार एक स्थान जाने पर एक की हानि, किस में हानि, ये भागार में हानि, जिसे हमने दसवीं पुस्तक में बहुत बार देखा था, तभी हम यहाँ इसको ज कहेंगे, तो ज प्लस एक स्थान जाने पर एक की हानि, तो हाँ पल्ले के असंख्यात विभाग में कितने की हानि हो जाएगी, ये ज स्थान जाने पर नहीं, ज प्लस वन में एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितनी, एक्चुअली ये घनागुल का असंख्यात, ज का अर्थ होता है घनागुल का असंख्यात भाग, तो घनागुल का असंख्यात भाग बहुत बड़ी संख्या है, पल्ले का असंख्यात भाग छोटी संख्या है, तो उसमें एक की हानि, तो ये एक का हानि अपूर्णांकों में हानि होगी, पूरा एक नहीं होगा, एक बटे समथिंग हो जाएगा, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, पल्ले का असंख्यात भाग डिवाइडेड बाय ज प्लस वन। यहां तक बात ख्याल में आई ना, तो कहते अभी जब दो प्रदेशों की हानि होगी तो कैसे करना, तो ऊपर का विरलन ऐसा है, नीचे का विरलन कितना करेंगे हम, यहाँ पल्ले की असंख्या हमने नीचे का विरलन ज किया था, तो उसके बाद ज के आधा बार करना, क्योंकि ज के आधे बार अगर विरलन करेंगे और उसमें ज बांट देंगे तो हरेक के ऊपर दो दो आएंगे, कल हमने उसको हजार मानकर उसका हिसाब बताया था, आज ज मानकर कर रहे हैं, यानी यहाँ ज बटे दो का विरलन किया और उसमें ज बांट दिया, तो अभी इक्वेशन वही होगा कि एक ज खोल दिया तो कितने में गया, तो ज बटे दो स्थानों में गया, तो ज बटे दो प्लस वन इतने स्थान जाने पर एक की हानि होती है, पल्ले के असंख्यात भाग में कितने की हानि, तो पल्ले का असंख्यात भाग डिवाइडेड बाय ज बटे दो प्लस वन, अब हाँ तो ऐसे दो करो तीन करो चार करो, यही पद्धति है। अब कहते ऐसे जघन्य उगाना डिवाइडेड बाय जघन्य परिता संख्यात, पल्ले का संख्यात भाग तो बड़ी संख्या है, तो जघन्य परिता संख्यात से भाग देंगे, ज प अ इतने स्थान के और उसमें ज बांट दिया, तो हरेक के माथे पर ज प आएगा, तो इतना आएगा, तो उसका इक्वेशन कैसे होगा, ज डिवाइडेड बाय ज प प्लस वन स्थान जाने पर एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितने की हानि, वो सारे अपूर्णांक में ही आते हैं,
अब कहते हैं
तो एक की हानि कब होगी, पूरे एक की हानि कब होगी, यानी हमें ऐसी संख्या चाहिए कि जहां पूरी एक की हानि आनी चाहिए, यानी तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितनी आएगी, इस तरह से वो इक्वेशन सब चाहिए। यानी हम जो को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि नीचे के स्थान प्लस वन जाकर एक की हानि हो जाएगी, तो वो ऐसा आ जाएगा कि ये स्थान कितने हैं, पल्ले के असंख्या, और उसमें ज दिया हमने, हर एक के माथे पर ज ज आया। अब ज को फिर खोलो और आगे के स्थानों में देना, तो हर एक के ऊपर एक आना चाहिए, हर एक के ऊपर एक आना नहीं चाहिए, हानि का प्रमाण एक आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने देखो पेज नंबर 37 निकालना, नीचे की शंका, इस प्रकार एक को आदि लेकर एक अधिक क्रम से प्रदेशों के बढ़ने पर कितना अध्वान जाने पर ऊपरी विरलन में एक रूप की हानि पाई जाती है। यानी वो सारे पल्ले के असंख्यात भाग में से हमने एक का असंख्यात भाग कम करते गए थे, तो पूरा एक कम कब होगा, तो कहते रूप कम ऊपरी विरलन से, रूप कम विरलन, उपका विरलन कितना था, पल्ले का असंख्यात भाग था, तो पल्ले के असंख्यात भाग में से माइनस एक करो, तो रूप कम ऊपरी विरलन से जघन्य अवगाहना को खंडित करने पर, यानी जघन्य अवगाहना डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन, उसमें से एक खंड प्रमाण और जघन्य क्षेत्र के विकल्पों के बीत जाने पर, यानी इतने विकल्प बीत जाने पर एक रूप की हानि पाई जाती है। अब वो इस प्रकार है, वो उसको समझा रहे, रूप कम ऊपरी विरलन को नीचे विरलित कर, यानी नीचे का विरलन है पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन। पहले हमने नीचे का कहां से शुरू किए थे, जघन्य अवगाहना को नीचे विरलित किया, फिर उसके आधे को, उसके थर्ड भाग को, उसके असंख्यात भाग को विरलन करते 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 अभी कितना नीचे का विरलन, पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन। जघन्य क्षेत्र को समखंड करके देने पर, अभी उसमें जघन्य खंड इसका विरलन करना वन 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 वन, और जघन्य को इसमें विरलन बांट दो, तो हरेक के प्रति क्या होगा, ज डिवाइडेड बाय पल्ले का संख्या का भाग माइनस वन, हरेक के खाते में आएगा। अब यहाँ इक्वेशन कैसे होगा, एक ज खोल दिया और इतने स्थानों में बांट दिया, तो उसका उत्तर है कि पल्ले का संख्या के भाग माइनस वन प्लस वन, स्थान जाने पर एक की हानि, फिर से पल्ले के असंख्यात भाग माइनस वन प्लस वन, स्थान जाने पर एक की हानि। अभी माइनस वन प्लस वन हो गया ना, यानी पल्ले के असंख्यात भाग स्थान जाने पर एक की हानि। कल वो हजार में नहीं बैठता था, मगर आज ज के उदाहरण लेने से ज्यादा बैठता है। यानी क्या किया हमने, पहले हमने ज को विरलित करते थे, ज के आधे को विरलित करते थे, ज के तृतीय भाग को, ज के असंख्यात भाग को विरलित करते थे। अब नीचे का विरलन कितना है, हाँ पल्ले के असंख्यात भाग माइनस वन। देखो आप ऐसा लिख सकते हैं वहां पर, नीचे का विरलन पर डिवाइडेड बाय असंख्यात माइनस वन। अभी हमारा इक्वेशन कैसा होता है, नीचे का विरलन प्लस वन, स्थान जाने पर एक की हानि, तो नीचे का विरलन प्लस वन, स्थान जाने पर एक की हानि, यानी पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू पल्ले का असंख्यात भाग, यानी यही होता है ना, पल्ले का असंख्यात भाग स्थान जाने पर एक की हानि हो जाएगी। यानी एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए इतने स्थान आगे जब गएंगे तब भागहार में एक की हानि हो जाएगी। ये हमारे कल की बात आ गई। अभी मैं ये समाधान फिर से पढ़ती हूँ नीचे का। रूप कम उपरिम विरलन से, उपरिम विरलन था पल्ले का असंख्यात अभाव, तो रूप कम का अर्थ था माइनस वन। जघन्य अवगाहना को खंडित करने पर उसमें से एक खंड प्रमाण अजघन्य क्षेत्र के विकल्पों के बीत जाने पर, अभी अजघन्य में उसके नंबर लगा है, अजघन्य का नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से, एक रूप की हानि पाई जाती है वह इस प्रकार है। रूप कम उपरिम विरलन को नीचे विरलित कर जघन्य क्षेत्र को समखंड कर देने पर विरलन रूप के प्रति वृद्धि रूप प्राप्त होते हैं। वृद्धि रूप यानी कितने के वहाँ वो, यानी एक ज हमने खोल दिया जघन्य अवगाना और इसमें बढ़ गए। अब इनको ऊपर देकर समकरण करते समय हीन रूपों के प्रमाण को कहते हैं। रूपाधिक अधस्थन विरलन प्राची प्रमाण अध्वान जाकर, अधस्थन विरलन हमारा पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन है और उसमें रूपाधिक करने से प्लस वन हो जाता है। यानी अभी हम ऐसा लिखेंगे पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन प्लस वन, इतना जाने पर यदि एक रूप की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन कितना है हमारा वही पल्ले का असंख्यात भाग, ये उतना ही आता है ना, जाने पर कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक रूप आता है, यानी पल्ले का असंख्यात भाग डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यात इज इक्वल टू एक, उसको ये भागहार में हानि का प्रमाण आया। यानी अभी हमारा नया भागहार कैसे होगा, पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन, इसको ऊपरी विरलन में से कम करने पर वहां के क्षेत्र विकल्प का भागहार होता है। क्षेत्र विकल्प तो हमने देखा था कितना बढ़ा, उस वहां का भागहार कितना है एक, सॉरी पल्ले का असंख्यात भाग माइनस एक। इस प्रकार जाकर जघन्य अवगाहना को जघन्य परिता संख्यात से खंडित करके उसमें से एक खंड मात्र वृद्धि हो जाने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही रहती है, यानी असंख्यात भाग वृद्धि ही रहती है वहां पर। यहां समकरण करते समय हीन रूपों के लाने के विधान को कहते हैं। जैसे हमने एक हीन रूप एक लाया, वैसे वैसे जब कहा लाना है तो उसके बाद बताएंगे। यहां से अभी आज का विषय शुरू होता है। रूपाधिक जघन्य परिता संख्यात मात्र अध्वान जाकर यदि एक रूप की हानि पाई जाती है, एक मिनट, रूपाधिक जघन्य आ रही हाँ, यानी वो नीचे अगर एक रूप की हानि पाई जाती है, क्या कहना चाहते हैं, एक की हानि, एक रूप के नहीं एक की हानि। फिर से पढ़ती हूँ। रूपाधिक जघन्य परिता संख्या, रूपाधिक यानी प्लस वन, इतने स्थान जाने पर अध्वान जाकर यदि एक रूप की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन में कितनी पाई जाएगी। ऊपरी विरलन हमारा पल्ले का असंख्यात भाग था। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर हीन रूपों का प्रमाण आता है, वो हीन का प्रमाण आएगा। देखो देखो ये बात तो हमने पहले ही जान ली, एक की हानि कहाँ होती है उसकी बात वहां बताई थी। अब फिर से क्या बता रहे, ये हमारा ऊपर का और नीचे का, ये ऊपर का विरलन है, नीचे का विरलन कितना देखा उन्होंने अभी, यानी वो पद्धति बता रहे कि नीचे का विरलन जघन्य परिता संख्यात प्लस वन, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जघन्य अवगाहना को जघन्य परिता संख्या से भाग देने पर, अब यहाँ जो अवगाहना का प्रमाण होगा तो कहते कि इतने इस प्लस वन स्थान जाने पर, हमेशा हमारा क्या फॉर्मूला है, नीचे का विरलन प्लस वन, इतने स्थान जाने पर एक की हानि होती है। तो जघन्य परिता संख्यात प्लस वन स्थान जाने पर एक की हानि होती है, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितनी होगी? तो उल्टा करके वो इससे भाग दे और इतने स्थान, इतनी हानि होगी, वो पल्ले के असंख्यात विभाग में से माइनस करनी पड़ेगी। यानी जप अ प्लस वन स्थान जाने पर एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितने की हानि? वह हानि का प्रमाण आया, हीन रूपों का प्रमाण आता है। चौथी लाइन, उनको उपरिम विरलन में से कम करने पर वहां के जघन्य क्षेत्र स्थान का भागार होता है। जघन्य क्षेत्र स्थान का भागार यानी उस संख्या से भाग देने पर जघन्य क्षेत्र आता है, क्योंकि हमने पहले क्या देखा था, सबसे जघन्य क्षेत्र कितना था उन सूक्ष्म निगोद का, जघन्य अवगहना को पल्ले के असंख्यात विभाग से भाग दिया था। अब आगे की जो स्थान है, एक प्रदेश वृद्धि, दो प्रदेश वृद्धि, तीन प्रदेश वृद्धि, उसकी बात चल रही। पुनः इस अवगहना के ऊपर एक प्रदेश अधिक क्रम से बढ़कर स्थित जीव, वो पहले पहले लाइन बराबर प्रिंट नहीं हुआ, उसको ठीक करना। स्थित, पहले ऊपर की लाइन में स्थान था, यहाँ स्थित लिखा है। वो स्थित जीव तदनंतर उपरिम क्षेत्र का स्वामी होता है। यहाँ भी असंख्यात भाग वृद्धि रहती है, क्योंकि अभी वो असंख्यात भाग ही वृद्धि हुई है, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात से जघन्य अवगहना को खंडित कर उसमें एक खंड मात्र प्रदेशों की वृद्धि का अभाव है। यानी संख्यात भाग वृद्धि कब कहेंगे? देखो, पहले हमने क्या किया था, अभी भी कितनी भाग वृद्धि है जी, वृद्धि कितनी हुई है, ये तो हमने भागार में हानि का प्रमाण कह रहे हैं। परंतु जघन्य अवगहना में एक प्रदेश बढ़ा, दो प्रदेश बढ़े, तीन प्रदेश बढ़े, वो तीन प्रदेश क्या है, जघन्य अवगहना वाला जो संख्या है उसका असंख्यात अभाव है। हाँ, तो इस तरह से हम कहते हैं अभी भी असंख्यात भाग की वृद्धि है, क्योंकि हम उसको उससे भाग दे रहे हैं ना। इस प्रकार जाकर जघन्य अवगहना को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके उसमें से एक खंड मात्र जघन्य अवगहना के ऊपर वृद्धि हो चुकने पर संख्यात भाग वृद्धि की आदि यानी शुरुआत और असंख्यात भाग वृद्धि की समाप्ति हो जाती है। समझ में आती है ना बात? ये पहले हमने क्या किया था, एक प्रदेश की वृद्धि हुई थी ना, एक प्रदेश की वृद्धि ने जो डिवाइडेड बाय जो इज इक्वल टू एक, तो असंख्यात भाग वृद्धि। अब जो डिवाइडेड बाय टू जघन्य अवगहना का आधा भाग से भाग दिया तो दो प्रदेशों की वृद्धि आई। तो कहते यहाँ जघन्य परिता संख्या से भाग दिया तो जो कोई संख्या है वो भी असंख्यात ही भाग बढ़ा ना। ऐसे करते करते जब यहाँ पर हम उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे तो जो प्रमाण आएगा उतनी जब वृद्धि होगी उसको हम संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। तब तक नहीं, ये कहना चाहते हैं, ख्याल में आती ना बाती? उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे तब जो संख्या आएगी उसको उतनी वृद्धि होने पर कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। अभी असंख्यात भाग वृद्धि उसके पूर्व तक थी, अब इसको संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। यहाँ भागार कहते हुए इस प्रकार है। अब देखो भागार निकालने का तरीका क्या था हमारा, वृद्धि का प्रमाण उन्होंने बता दिया कि जघन्य पर जो जघन्य अवगहना थी, पहले हम पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देते थे, फिर उससे छोटे करते 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 कि हमें जघन्य परिता संख्या से भाग देते थे, अभी उससे भी एक कम करो तो उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया, उतनी वृद्धि का प्रमाण आना चाहिए। तभी नीचे हम किसका विरलन करेंगे, उत्कृष्ट संख्यात का विरलन करेंगे। तो उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर दिया और उसमें जघन्य अवगाहना को बांट दिया। तो हर एक के प्रति जघन्य डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्यात आ गया। अब कैसे इक्वेशन क्या होगा भागार में हानि? उत्कृष्ट संख्यात प्लस वन स्थान जाने पर एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात में कितने की? तो उत्कृष्ट संख्यात प्लस एक क्या कहलाता है? जघन्य परिता संख्यात स्थान जाने पर एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितने की हानि? ख्याल में आई मत? वही इस प्रकार है उत्कृष्ट संख्यात का। अभी उनकी भाषा में पढ़ेंगे उत्कृष्ट संख्यात, ये नीचे का विरलन है। उत्कृष्ट संख्यात का विरलन करके, हमेशा ये हमारे जो नीचे का विरलन ऊपर का विरलन उसकी बात है। तो उत्कृष्ट संख्यात का विरलन करके उपरिम रूप धरित राशि को, उपरिम रूप धरित क्या राशि क्या है? जघन्य अवगाहना। समखंड करके देने पर विरलन रूप के प्रति वृद्धिंगत प्रदेशों का प्रमाण प्राप्त होता है। वृद्धि कितनी आई उसकी प्रमाण होगा, यानी जघन्य अवगाहना डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्यात। फिर इसको उपरिम रूपधरित राशियों पर देकर समकरण करते समय नष्ट रूपों का प्रमाण कहा जाता है। यानी क्या किया हमने, हमारी भाषा में एक जग को खोल दिया और ऊपर के आगे के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण स्थानों में बांट दिया। यानी उत्कृष्ट संख्यात प्लस स्वयं स्थान जाने पर एक की हानि हुई। तो कहते रूपाधिक अधस्तन विरलन मात्र अध्वान जाकर, यानी उत्कृष्ट संख्यात प्लस वन स्थान जाने पर, उसका अर्थ ही होता है जघन्य परिता संख्यात स्थान जाने पर, यदि एक रूप की हानि पाई जाती है तो उपरी विरलन में वह कितनी पाई जाएगी? ये हमें हानि का प्रमाण मिलेगा इस इक्वेशन से। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर परिहीन रूप प्राप्त होते, परिहीन है वह हानि का प्रमाण मिलेगा। पश्चात प्राप्त रूपों को, ये जो हानि है उसको उपरिम विरलन में से घटा देने पर, उपरिम विरलन हमारा पल्ले का असंख्यात भाग था, वहां का भागार होता है। ये समझ में आ रही है ना बात? यहां से लेकर ऊपर संख्यात भाग वृद्धि ही होकर जाती है, यानी वो भागार का प्रमाण कितना है उन्होंने बताया, पर अभी जो जघन्य अवगाहना में कितने की बढ़ोतरी होगी तो संख्यात भाग के, तो हम इसको संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। जब तक उपरिम विरलन का अर्ध भाग स्थित रहता है वहां संख्यात गुण वृद्धि की आदि और संख्यात भाग वृद्धि की समाप्ति हो जाती है। यानी जब तक उपरिम विरलन का अर्ध भाग का अर्थ होता है क्या है, पल्ले का असंख्यात भाग डिवाइडेड बाय टू उत्कृष्ट संख्या से कम करते 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 आए थे, यानी हम पल्ले के असंख्यात भाग को जिससे भाग देते थे, पहले पल्ले के असंख्यात से एक माइनस किया, दो माइनस किए, तीन माइनस किए, ऐसे करते 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 वहां पर हानि का प्रमाण वो तो हमने देखा ना अभी। तो कितना घटाए उसमें, आधा पल्ले के असंख्यात में से आधा माइनस किया, उसका आधा माइनस किया तो रहा कितना, पल्ले का संख्या तो भाग। ख्याल में आई बात? पहले हमने बहुत पहले गणित निकाला कि एक रूप की हानि कभी होती है, तो हमने उसका निकाला था, यानी ऊपरी नया भागार पल्ले का संख्या तो भाग माइनस वन आया था। फिर ऐसे करते 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 के हम बहुत आगे बढ़े, असंख्यातों में चले गए, फिर भी पल्ले के असंख्यात भाग में से पल्ले का असंख्यात भाग माइनस कर दिया, तब जाके ऊपरी विरलन पल्ले का आधा रह गया, आधा रह गया, ये कह रहे हैं। देखो यहां से लेकर ऊपर संख्यात भाग वृद्धि ही होकर जाती जब तक ऊपरी विरलन का अर्ध भाग स्थित रहता है, यानी हानि का प्रमाण पल्ले का संख्यात भाग हो जाएगा, सॉरी आधा हो गया। अब वहां से लेकर यानी उसको क्या कहेंगे, संख्यात भाग वृद्धि होकर जाती है। संख्यात भाग वृद्धि का अर्थ क्या है, सॉरी संख्यात गुण वृद्धि वहां से शुरू होती है। अपनी भाषा में समझेंगे उसको, संख्यात गुण वृद्धि होने के लिए ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक एक प्रदेश बढ़ते हुए हम उसको कब कहेंगे संख्यात गुण वृद्धि हुई, डबल हो जाएगा तब, यानी ज प्लस ज हो जाएगा तो दो ज हो जाएगा ना, तो वृद्धि कितनी हुई, दो गुना हुई इस तरह से। यानी भागा आधा हो जाएगा। देखो जब नीचे का विरलन पल्ले का असंख्यात्वा भाग था तो इसके ऊपर अगर हम घनांगुल देते थे तो हरेक के ऊपर ज आते थे। अब क्या करना, ये आधा कर देना उसमें से तो ये दो जो आएगा, ख्याल में आती है ना। ऊपर का विरलन अगर हम आधा करते हैं तो जो दो जो आएगी उसके ऊपर, यानी वो संख्यात गुण वृद्धि वहां से प्रारंभ होती। अब नीचे का पैराग्राफ 39 पेज पर, अब वहां से लेकर फिर भी एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक क्रम से क्षेत्र विकल्पों की वृद्धि होकर जघन्य क्षेत्र प्रमाण प्रदेशों के बढ़ जाने पर तिगुणी वृद्धि होती है। अब उसमें एक एक प्रदेश बढ़ाओ तो जो तीन ज हो जाएगा और वहां भागार पल्ले के असंख्यात विभाग डिवाइडेड बाय तीन हो जाएगा, यानी रह जाएगा वहां पर। उस अवगाहना का भागार जघन्य अवगाहना संबंधी भागार के तृतीय प्रमाण होता है, यानी पल्ले के असंख्यात विभाग को तीन में जाए। पश्चात एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से जघन्य अवगाहना मात्र प्रदेशों की वृद्धि होने पर चतुर्गुणी वृद्धि होती है, यानी चार ज हो जाएगा। और वहां भागहार यानी वो ऊपर की अवगाहना का प्रमाण दो गुना हुआ, तीन गुना हुआ, चार गुना हुआ, चतुर्गुणी वृद्धि ने चार ज हो गई, तो वहां का भागार नेचुरली पल्ले के असंख्यात भाग को उसे चार से डिवाइड किया उतना आ जाएगा चतुर्थ भाग संबंधी होता। इस प्रकार नीचे से तीसरी लाइन जघन्य अवगाहना संबंधी गुणकार के उत्कृष्ट संख्यात मात्र हो जाने तक ले जाना चाहिए। जब हम ज को उत्कृष्ट संख्यात गुणा करेंगे अवगाहना तो भागार पल्ले के असंख्यात भाग डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा, ख्याल में आई बात। उस अवगाहना का भागार जघन्य अवगाहना संबंधी भागार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर उसमें से एक खंड के बराबर होता है। यानी अवगाहना जब जघन्य अवगाहना इंटू उत्कृष्ट संख्यात होती है तो भागहार कितना होता है पल्ले के असंख्यात वा भाग, हाँ उत्कृष्ट संख्यात। पश्चात अभी 40 पेज पर आना, उसके ऊपर एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से एक जघन्य अवगाहना मात्र प्रदेशों के बढ़ जाने पर, अभी वो जघन्य परिता संख्यात हुआ ना, उत्कृष्ट संख्यात में एक बढ़ा तो जघन्य परिता संख्यात बार बढ़ा, असंख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ और संख्यात गुण वृद्धि का अंत होता है। यानी जघन्य अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय जघन्य परिता संख्यात, अब वहां का भागहार क्या होगा, उस अवगाहना का भागहार जघन्य अवगाहना संबंधी भागहार को जघन्य अवगाहना संबंधी भागहार पल्ले का असंख्यात भाग उसको जघन्य परिता संख्यात से खंडित करने पर, जो से हम खंडित करेंगे, समझ में आती है बात, हम एक दो से आगे बढ़ते गए तो ये समझना आसान है। जब अवगाहना दुगुनी हुई तो जघन्य परिता संख्यात वाला भागार आधा हुआ, अवगाहना तिगुनी हुई तो भागार तृतीय भाग प्रमाण हुआ। वहां गुणकार लेना या भागार लेना, क्योंकि भागार का भागाकार गुणकार में चला जाता है। जब जघन्य अवगाहना जघन्य परिता संख्यात गुणा हो गई तब भागार जघन्य परिता संख्यात वे भाग प्रमाण हुआ। पश्चात यहां से लेकर आगे एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से असंख्यात गुण वृद्धि के चालू रहने पर, यानी यहाँ तो असंख्यात गुण वृद्धि ही रहेगी सब जगह, एक बार जघन्य परिता संख्यात से गुणा किया उसको एक प्रदेश बढ़ाओ तो भी मूल जो अवगाहना थी उससे असंख्यात गुणा आगे के सारे विकल्प वो अनंत गुणा तो नहीं होने वाले हैं, असंख्यात गुणा रहेंगे। तो कहते कि यानी इतने पढ़े गए भी, देखो वृद्धि होने पर सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना में सूत्रोक्त आवली के असंख्यात वे भाग मात्र गुणकार के प्रविष्ट हो जाने पर, अभी हमने कितने ही जघन्य परिता संख्यात गुणा किया तो जघन्य परिता संख्यात यानी बीच वाले परिता संख्यात के बहुत से भेद जाने पर जो पर्टिकुलर आवली का असंख्यात व भाग का भेद है, क्योंकि आवली कब कहेंगे, जघन्य युक्ता संख्यात को आवली कहेंगे। तो ये परिता संख्यात के जो विशिष्ट भेद है बीच वाले वो सारे कैसे है, आवली के असंख्यात वे भाग है। फिर से देखो जघन्य परिता संख्यात मल्टीप्लाई जघन्य परिता संख्यात मल्टीप्लाई कितने बार, उतनी बार तो जाके आवली आती है। तो ये बीच वाले सारे जो संख्या है वो क्या है, आवली का असंख्यात भाग है ना, यही कहते हैं। क्योंकि हमने कल बात बताई थी कि सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जो जघन्य अवगाहना है उसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि होते 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 जब आवली के असंख्यात भाग गुणा होते हैं वहां जाकर सूक्ष्म तेज का एक की नी वहां होते है ना वायु का एक आ जाएगा, सूक्ष्म वायु का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना का स्थान वहां शुरू हो जाता है। अब उसके आगे एक एक प्रदेश की वृद्धि वाले निगोद को भी हो गए वायु का एक को भी हो गए, कल मैंने बताया नी मा ते अ प्रू, यानी पहले निगोद के अवगाहना के इतने स्थान फिर वायु का एक, ये सब कैसे सूक्ष्म अपर्याप्त है देखो अभी हम पढ़ेंगे। अभी आप एक नंबर डालना सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना में, सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन मिला, सूक्ष्म निगोद जीव की जो है ना वो सूक्ष्म सेकंड लाइन में सूक्ष्म निगोद है उसको एक नंबर डालना, आपने उसमें नंबर डाला है कहां पर, चालीस में सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लाइन में आपने कहां एक नंबर डाला है, पहला ऊपर का पैराग्राफ, ऊपर का पैराग्राफ सेकंड लाइन चालू रहने पर एक नंबर यहां डालना है, सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना में सूत्रोक्त आवली के असंख्यात वे भाग मात्र गुणकार के प्रविष्ट हो जाने पर, यानी हमने देखा था ना ये जो हमने जीवकांड में टेबल बनाया देखा, पहले कोठे में पांच स्थान बताए थे नी यानी निगोद, वा वायु काय, ते तेज काय, अ यानी अपकाय और पृथ्वी काय, ये सारे कौन से सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जीव है और उन सबकी जघन्य अवगाहना है। एक से दूसरी आवली के असंख्यात भाग गुना, दूसरे से तीसरी आवली का असंख्यात भाग गुना, ऐसे अभी तो हम पहले स्थान से अभी दूसरे तक नहीं पहुंचे हैं। ये पांचों सूक्ष्म सूक्ष्म है, बाद में इन्हीं के बादर ले लेंगे जो कुछ अभी आगे ले लेंगे, उसकी बात अभी यहां नहीं करते। तो सूक्ष्म से बादर तक जाएंगे तो पल्ले का असंख्यात विभाग गुणा हो जाएगा, यानी वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें। अभी तो हम सेकंड स्थान पर आते हैं, तो पहला नंबर कहाँ दिया, सूक्ष्म निगोद जीव के जघन्य अवगाहना में सूत्रोक्त आवली के असंख्यात विभाग मात्र गुणकार के प्रविष्ट हो जाने पर सूक्ष्म वायु का एक लब्धि अपर्याप्तक का अपर्याप्तक की है का अपर्याप्तक की है, हाँ वो की बराबर नहीं छपा है, जघन्य अवगाहना के सदृश, अभी सूक्ष्म की भी अवगाहना के भेद चलते ही रहेंगे, उसके सदृश सूक्ष्म निगोद जीव लब्धि अपर्याप्तक की अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहना होती है। अनुत्कृष्ट इसलिए कहा कि वो उत्कृष्ट को पहुंचने में बहुत समय अभी, यानी वायु का एक शुरू हो गए, निगोद की तो चल ही रहेगी, यानी निगोद की तो कितने स्थान हो गया, अभी और भी बहुत आगे जाना है। अब यहां हमने सूक्ष्म वायु का एक नाम आया ना, वहां दो नंबर डाला। अब नीचे का पैराग्राफ पढ़ रही हूं, हाँ दो नंबर, अब नीचे का पैराग्राफ। अब सूक्ष्म निगोद जीव की अवगाहना को छोड़कर और सूक्ष्म वायु का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिकार इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा, तेजल बताएंगे चार वृद्धि कौन सी है, पहले ही अरे एक प्रदेश बढ़ने पर कितनी वृद्धि कहलाएगी, जघन्य को जघन्य से भाग देंगे तो एक आएगा, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुणा, जब ज दो गुणा होगा तब संख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी और बाद में असंख्यात गुणा वृद्धि होगी, यानी जब से जघन्य परिता संख्यात गुणा हो जाएगा ज, तब उसको असंख्यात गुणा वृद्धि कहलाएगी, और वो कित कहाँ तक बढ़ाना चाहिए, आवली के असंख्यात पे भाग गुणा तक, तब जाके तीसरा स्थान आएगा, तीसरा स्थान है ना, वहां से अभी तेज काई की जघन्य उगाना शुरू हो जाएगी। देखो तो चार वृद्धियों द्वारा मिला ना, सूक्ष्म वायु का एक लब्धि अपर्याप्त की अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहना के, अभी तीन नंबर यहां डालना है, सूक्ष्म तेज का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के समान हो जाने तक बढ़ाना चाहिए, यानी अब यहां से क्या होगा, वो निगोद के भी स्थान चल रहे हैं, वायु का एक भी चलेगी और यहां से तेज का एक भी उसमें ज्वाइन हो गया, ये तीसरा, तत्पश्चात उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके, अभी हम वो सूक्ष्म तेज का एक की उसको जघन्य कहेंगे, यानी जोते कहेंगे उसको, तो वहां उसमें एक प्रदेश बढ़ाओ दो प्रदेश बढ़ाओ इस तरह से उसमें भी बढ़ाते जाना, एक प्रदेश अधिक क्रम से चार वृद्धियों द्वारा, अभी शॉर्ट में बता देते हैं, बहुत अच्छा, अभी चार नंबर डालो, सूक्ष्म जल कायिक जिसको हम अपकायिक भी कहते हैं, लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए, फिर उसको छोड़कर और सूक्ष्म जल कायिक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके, अभी यहां से समझ में आ रही है ना बात सब, एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा, अभी बढ़ाते बढ़ाते अब किसके समान हो जाएगी, सूक्ष्म पृथ्वी का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, ये सभी पृथ्वी का एक पण कैसा है, सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त और उसकी भी मिनिमम जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। देखो पहले नंबर पर सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, अभी हम जघन्य अवगाहना सबके लिए कॉमनली लिखेंगे बाद में, ये सारे पांचों ही जीव सूक्ष्म है और पांचों ही जीव लब्धि अपर्याप्त है, तो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त में पहला नंबर निगोद, दूसरा नंबर वायु कायिक, तीसरा तेज कायिक, चौथा जल कायिक और पांचवा पृथ्वी कायिक, समझ में आई बात, और वो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आवली के असंख्यात भाग गुणा है, यहाँ चार बार आवली का असंख्यात भाग हो गया, पांच स्थान है तो चार अंतराल हो गए ना, नहीं नहीं नहीं, पहला निगोद, फिर वायु कायिक, फिर तेज कायिक, फिर अप कायिक यानी जल कायिक, और पांचवा नंबर पृथ्वी कायिक। अप कायिक यानी जल कायिक। ये सारे कैसे थे? सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त की जघन्य उगाना, ये सब, ये पांचों को मिलकर वहां जीवकांड में पहला कोठा बनाया था। इसे कोठे उन्होंने एक के बाद एक लिखे थे। अब हम आगे देखते हैं, पेज नंबर 41 पर यहाँ लिखा ना, सूक्ष्म पृथ्वी का एक लब्धि अपारी जघन्य उगाने के सदृश होने तक बढ़ाना चाहिए, फिर उसको छोड़कर सूक्ष्म पृथ्वी का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा। अभी हम सेकंड कोठा यहाँ से शुरू होते हैं। अब यहाँ कहते हैं बादर वायु का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के, पहले सूक्ष्म की थी, अभी सभी बादर की लब्धि अपर्याप्त ही लेना और जघन्य अवगाहना ही लेना। यहाँ निगोत को पहले नहीं लेना है, पहले पहला क्रम का निवाते अप्रु, अब यहाँ का क्रम है वाते अप्रु निप्र। वा यहाँ छह है नाम, वा ते अप्रु, यहाँ निगोत पहले स्थान पर था, वहां पांचवे स्थान पर जाएगा। हाँ, प्रु के बाद नी और उसके बाद प्र यानी वो प्रत्येक वनस्पति आ जाएगा, इसलिए प्र। बादर में छह भेद होते हैं, सूक्ष्म में पांच भेद होते हैं, निगोद और प्रत्येक, इस तरह से दो भेद अलग अलग किए। वनस्पति को लास्ट में रखना। देखो पहला कैसे था, नी पहला था, वहां ते अप्रु था, अब नी को छोड़ो, वहां ते अप्रु वही लेखा, उसके बाद नी और फिर प्र यानी प्रत्येक वनस्पति। और ये सब कैसे, मादर लब्धि अपर्याप्त की जघन्य उगाना, ये नंबर सेकंड कोठा है, इसमें छे छे ये सभी मादर है, ऐसा नंबर छह नंबर सेकंड लाइन में लिखा, बादर वायु का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश होने तक बढ़ाना चाहिए। विशेष इतना है कि यहाँ गुणकार पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग है। देखो ये पहले कोठे से दूसरे कोठे में गए ना, सूक्ष्म से बादर, इसको परस्थान गुणकार कहते हैं। पहला सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म अवली का असंख्यात्वा भाग था, अभी सूक्ष्म से बादर पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग होगा। हाँ, बादर से बादर वो अवली का असंख्यात्वा भाग होगा। हाँ, इसको परस्थान गुणकार कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बादर से बादर भी पल्ल्य का संख्या तो, सॉरी, पल्ल्य का संख्या तो भागी है बादर से बादर में, नहीं बादर से बादर भी पल्ल्य का संख्या तो भाग था, अवली का संख्या तो भाग। अभी पढ़ेंगे आगे चौथी लाइन, क्योंकि वह परस्थान गुणकार है। परस्थान समझे ना, हमने सूक्ष्म से बादर देखा था, फिर इसको छोड़कर और वायु का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा। अभी नंबर सात देना, बादर तेज का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश होने हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी गुणकार पल्लोपम के असंख्यात विभाग प्रमाण, बादर टू बादर भी पल्ल का असंख्यात विभाग, क्योंकि बादर से बादर जीव की अवगाहना का गुणकार पल्लोपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है, ऐसा सूत्र वचन है। अब इसको छोड़कर और बादर तेज का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके, सात हो गया ना, हाँ। अभी अभी नंबर नहीं डालना, अभी नंबर नीचे के लाइन में, एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा। अब नंबर डालो आठ, बादर जल का एक, जिसको हम अप का एक भी कह सकते हैं, लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग है। इसका कारण पहले के ही समान कहना चाहिए, बादर टू बादर पल्य का असंख्यात भाग, सूक्ष्म टू बादर अवलिक पल्य का असंख्यात है, यानी सूक्ष्म टू सूक्ष्म अवलिक का असंख्यात भाग। पश्चात इसको छोड़कर और बादर जल का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा, नहीं नहीं अभी नंबर देना नौ, अभी नीचे से दूसरी लाइन में नौ नंबर देना। बादर पृथ्वी का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए, फिर उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके, इसे ने वो बादर पृथ्वी का एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा, अब दसवां नंबर डालना। बादर निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहन के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। पश्चात उसे छोड़कर और इसको ग्रहण करके, ये बादर निगोद को प्रदेश अधिक क्रम से चार वृद्धियों के द्वारा निगोद प्रतिष्ठित लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ उन्होंने और एक बढ़ाया बीच में, निगोद लब्धि अपर्याप्त और निगोद प्रतिष्ठित लब्धि अपर्याप्त भी लिया। हाँ नहीं नहीं हमने छह लिखे थे, इन्होंने सात कर दिए। किसमें? हाँ तो उन्होंने निगोद प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित ऐसे दो दो बनाए और निगोद लब्धि अपर्याप्त के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक ऐसे दो दो भेद किए उन्होंने। जीवकांड में छह भेद किए थे। निगोद 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 नी के दो भेद नहीं है, निगोद एक भेद है। निगोद के बाद निगोद प्रतिष्ठित, निगोद का लब्धि अपर्याप्त, फिर यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये दो भेद किए। हाँ ये सब प्रतिप्रतिष्ठित और ये अप्रतिष्ठित वनस्पति के भेद है वो। तो देखो बारह नंबर पर एक दो तीन चार पांचवी लाइन पर, यानी वो निगोद प्रतिष्ठित को छोड़ना, एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए चार वृद्धियों द्वारा बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर लब्धि अपर्याप्त, यहाँ पर तो रखना ही सबके लिए, जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यह लब्धि अपर्याप्त बराबर लिखो, ब्रह्मा लब्धि प अलग अलग लिखो, बीच में यह छूट गया है। ये बारह नंबर हुआ अभी। यहाँ पर भी गुणकार पल्योपम का असंख्यात वा भाग है। कारण का कथन पहले के ही समान कहना करना चाहिए। अब उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके, यानी जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक की है ना लब्धि अपर्याप्त की, कारण है बादर और बादर में पल्य का संख्या का भाग और परस्थान में भी पल्य का संख्या, ये उसका कारण है। अब देखो अब उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा, अब तेरह नंबर लाना। अब त्रसों में आते हैं, है ना, द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। देखो यहाँ जो अभी तक हमने जो देखे ना, निगोद देखे, ये देखे, वो देखे, उनकी भी अवगाहना की चल ही रहे अभी, सबके अवगाहना उनके साथ एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए उनके भी चलेगी, उन जीवों की अवगाहना तो चल ही रही है। यहाँ पर भी गुणकार पल्ल्योपम का असंख्यात्वा भाग है, इसका कारण पहले के ही समान कहना चाहिए। हाँ, ये 13 हो गए ना। अब उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके चार वृद्धियों द्वारा अब नंबर डालना 14। तीन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर भी गुणकार पल्ल्योपम का असंख्यात्वा भाग है, कारण पहले के समान कहना चाहिए क्योंकि ये सारे बादर जीव है। अब उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा अब नंबर डालो 15। चतुरिंद्रिय, वो द्री बराबर लिखना, चतुरिंद्रिय लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर भी गुणकार पल्ल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। देखो, लब्धि अपर्याप्त को में वो तो क्रम वही द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय है। वो पर्याप्तों के वो उत्कृष्ट अवगाहना में डिफरेंस था, वो कल हमने देखा था, वो बात अलग है। ये चतुरिंद्र हुआ, कारण भी पहले के समान कहना चाहिए। पश्चात उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। ये समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पर भी गुणकार पल्ल्योपम का असंख्यात्वा भाग है, इसका पहले के ही समान कारण करना चाहिए। अभी देखो, अभी तक हमने क्या क्या देखा जरा लिख के रखते ना, हमने एक दो तीन चार ऐसे हमने 1 से 5 तक, यानी आउली का असंख्यात्वा भाग 4 बार हुआ। अभी 5वें से 6ठे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 से 17 बाद में बताएंगे, यानी 11 बार पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग आया। अब 16 से 17 यहाँ 1 बार वो अवली का असंख्यात्वा भाग आएगा, बाद में पढ़ेंगे तब लिखेंगे, अभी तो इतना लिख दिया हमने। ने 5 से 16 तक देखा था ना हमने, पल्ले का असंख्यात्वा भाग 11 बार। अभी जब आगे आएगा तब देखेंगे। देखो, अब यहाँ करते नया पैराग्राफ पढ़ेंगे 43 पेज पर। तत्पश्चात पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा, अभी 17 नंबर डालो, सूक्ष्म निगोद जीव निवृत्ति पर्याप्त की, ये पर्याप्त जीव के लिए, परंतु रखा तो सूक्ष्म जीव, जैसे 5 पहले सूक्ष्म लिए थे वहां सूक्ष्म रखना है। हाँ, यानी ये सूक्ष्म की उत्कृष्ट लेना, पहले हमने बादर की जगह ने भी बीच में ली थी, है ना, यानी सूक्ष्म से बादर जीव बड़े ही होते ऐसा नहीं कहना, सूक्ष्म की रेंज में बीच में ही बादर की रेंज भी शुरू हो गई है। देखो दूसरा पैराग्राफ में सेकंड लाइन में सूक्ष्म निगोद, वहां 17 नंबर डालो, निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ गुणकार आवली का असंख्यात्वा भाग है क्योंकि बादर से सूक्ष्म को ले रहे, क्योंकि बादर से सूक्ष्म का अवगाहना गुणकार अवली का असंख्यात्वा भाग है, ऐसा सूत्र में निर्दिष्ट है। अब सूक्ष्म निगोद जीव निवृत्त पर्याप्त की जगन्य अवगाहना को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से आवली के असंख्यातवे भाग से खंडित करने पर उसमें से एक खंड प्रमाण बढ़ाना चाहिए। उसी की बात है, उसका वो आगे वाला गुणकार इतना हो जाता है। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित अवगाहना सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य ने अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना के सदृश होती है। हाँ, निवृत्ति पर्याप्त की, सॉरी, एक मिनट था, चार उद्यम सूक्ष्म निगोद जीव निवृत्ति पर्याप्त जघन्य अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। इस बढ़ाकर स्थित अवगाहना एक मिनट, हमने जो थोड़ा अधिक बढ़ा है ना, क्या किया देखो, अभी हम किस कहाँ पर है, 17 नंबर पर। 17 में क्या है, अभी निवृत्ति छोड़ो, पर्याप्त है सूक्ष्म निगोद पर्याप्त की जघन्य उगाना, पर्याप्त की जघन्य उगाना, और उसके आगे क्या होगा, विशेष अधिक सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना होगी, और उससे विशेष अधिक पर्याप्त की उत्कृष्ट होगी। देखो, पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से शुरू, सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य, फिर भी बादल शुरू होगा बीच में। अभी हम जाके 17वें स्थान पर कौन से आए, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त की जघन्य। 18वें पर विशेष अधिक में सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त की उत्कृष्ट लेना है, तो यहाँ करेक्शन करो। हाँ देखो, 18 नंबर डाला ना नीचे से, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 नीचे से 8वीं लाइन, ऊपर की उतनी होगी। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित अवगाहना वो 18 नंबर डालो, सूक्ष्म निगोद निवृत्ति अ डालो, यहाँ पर पर्याप्त के बदले अ डालो, तो अपर्याप्त की ये जघन्य निकाल कर उत्कृष्ट रखो, यानी जघन्य उत्कृष्ट दोनों लिखा है, उत्कृष्ट है वहां पर, जघन्य को निकाल दो। निवृत्ति शब्द डालने की जरूरत नहीं है, लब्धि, एक मिनट, एवं बड़ी दुन ठिद ओगाहनाए सुम निगोद निवृत्ति अपज्जत कस ओगाना सरीसा हो दे। निवृत्ति अपज्जत डाला है ना उन्होंने, निवृत्ति अपर्याप्त की, यानी उन्होंने निवृत्ति अपर्याप्त वाला और एक डाला बीच में, यानी वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसकी उत्कृष्ट अवगाहना होगी। हाँ, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पहले तक, क्योंकि योग उत्कृष्ट वहां तक चला जाता है, वहां उसकी उत्कृष्ट अवगाहना वहां पर होगी, पर उसकी जगन्य ली नहीं उन्होंने और उत्कृष्ट ही डाल दी। आगे भी उन्होंने डाला होगा ना, देखो पेज नंबर ऐसा ही डाला है, पेज नंबर 44 निकालो, वहां तक जाएंगे बाद में, पर उसकी 5वीं लाइन लेना। हाँ, ऊपर से सूक्ष्म वायु का एक निवृत्त्य लिखा है ना, निवृत्ति अपर्याप्त, वैसा त्य होना चाहिए, यहाँ पर भी निवृत्ति अपर्याप्त की जो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों विकल्प दिए, उसमें उत्कृष्ट होना चाहिए, हमने करेक्शन किया वो बराबर है। फिर से बताऊं, 18 नंबर पर क्या है, सूक्ष्म निगोद निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना के सदृश होती है। देखो क्या कहते हैं, हमने सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त देखा। अपर्याप्तों के दो भेद, लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त। तो अपर्याप्तों में जघन्य अवगाहना किसकी होती है? लब्धि अपर्याप्तों की। अपर्याप्तों में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होगी? निवृत्ति अपर्याप्त। बस इतना भेद है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय के द्वि त्रि च प, द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर्द्रिय पंचेन्द्रिय, ऐसे लिए हो। हाँ, अपर्याप्त की उत्कृष्ट। देखो, लब्धि और निवृत्ति शब्द नहीं डालेंगे ना, तो पहले कोठे में अपर्याप्तों की जघन्य, और अब जो डाल रहे हैं वो अपर्याप्तों की उत्कृष्ट। अपर्याप्तों में जघन्य किसके होगा? लब्धि अपर्याप्त को। अपर्याप्तों में उत्कृष्ट किसके हो गए? निवृत्ति अपर्याप्तों की। बस इतनी बात है।
अभी ये 16 तक हो गए, 17 चीजों नंबर चालू है।
देखो, अभी ये कैसे कोठे है विशेष अधिक, मैं भी जीव कांड के आधार से आपको कोठों की परिस्थिति बताती हूँ। उन्होंने ये पहला कोठा किया, उसमें वो नी वाते वो प्रूफ लिखा। दूसरा कोठा लिया, उसमें वो बादर सब लिखे। तीसरा कोठा किया, तो उसमें भी उन्होंने क्या लिए? पहले 5 लिए, फिर 6 लिए, और फिर 5 लिए थे, क्योंकि उन्होंने अप्रतिष्ठित प्रत्यय यहाँ डाला था। बात वही है, यहाँ कोठों की बात ही नहीं है ना, कोठे तो हमने बनाए। तो ये अप्रतिष्ठित प्रत्यय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुर्द्रिय पंचेन्द्रिय पांचवें, ये 16 के 16 तो यहाँ भी होते हैं। अब इसके बाद यहाँ का चौथा है, ये 16 नंबर यहाँ हो गए, 17 नंबर यहाँ पर आ गया, 17। अभी यहाँ पर भी, अभी ये अपर्याप्तों के है ना, अपर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना होगी यहाँ पर, जिसको यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट कहा। कहा नंबर कितना दिया था हमने अभी उसको? 17 दिया ना? नहीं नहीं 18, वो 17 पर कौन सा? सॉरी, ये पर्याप्तों की जघन्य, यहाँ पर्याप्तों की जघन्य, पर्याप्त जघन्य। अब ये सभी नंबर देंगे बाद में, या तो यहाँ नंबर दे दो या अभी इस क्रम से देंगे। अब कहेंगे उसके नीचे विशेष अधिक के कोठे हो गए। यहाँ पर्याप्तों की जघन्य है, यहाँ अपर्याप्तों की उत्कृष्ट होगी, अपर्याप्तों की उत्कृष्ट विशेष अधिक, और यहाँ पर्याप्तों की उत्कृष्ट होगी।
तो वो जो आपने ये जो बताया सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य, तो उनका क्रम कैसा होगा? निगोद,
हाँ, निवाते,
पहले जो पहले 5 का था,
हाँ वही होगा। पर्याप्तों की जघन्य, अपर्याप्तों की उत्कृष्ट, पर्याप्तों की उत्कृष्ट। अभी इससे विशेष अधिक। अभी 17 के पास यहाँ 18 दे दो, यहाँ 19 दे दो, ये 17 से ये 20, इस तरह से वो उससे असंख्यात गुना होगा, पर ये विशेष अधिक वो उसके अपने लेना। यहाँ निगोद लिया तो ये निगोद से निगोद ज्यादा होगा, और फिर ये असंख्यात गुना होगा, फिर आगे वाला इस तरह से।
मेरे दिमाग में अन्य बात चल रही है, यहाँ जो पंचेंद्रीय जीव जो है अपर्याप्त,
उसकी भी कितनी छोटी अवगाहना,
उसकी इतनी छोटी अवगाहना कि वहाँ आँखों को दिखे नहीं
दिखे, वो निगोद से भी छोटे
हैं।
उसके निगोद के स्थान कितने आगे चलता
और
है?
वो गार्डन डिनर लेते ना, तो उसमें क्या क्या आता होगा?
लब्धि अपर्याप्त की तो बात ही नहीं, वो कितने नहीं, जीव कहाँ कहाँ
पंचेंद्रिय भी आते हैं ऐसा,
आते हैं ना, वो सगे सम्मोचन उस वातावरण में उत्पन्न होते, वो तो दिखेगी भी नहीं ना इसमें। तो
वही तो कह रहा हूँ, अभी तो निगोद के उत्कृष्ट होगा,
अरे पंचेंद्रिय है भले अपर्याप्त है, तो उसके आधार से भी निगोद रहेगी कि नहीं रहेगी?
नहीं वो तो
उनके शरीर उनके आधार से और निगोद रहेंगे वो तो बात अलग, और ये स्वयं पंचेंद्रिय जी उसमें होते
हैं। सिर्फ हम अवगाना की अपेक्षा से देख रहे हैं, यहाँ संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त तो जो है उसकी जघन्य अवगाना भी निगोद से छोटी, क्योंकि निगोद के आगे उत्कृष्ट अवगाना आने वाली है। यानी ऐसे जीव भी रात के भोजन में या ये डिनर इसके करते हैं ना क्या गार्डन कैंडल लाइट डिनर, यानी हम सोच नहीं सकते ये कितना अपने को ख्याल में आता है कि भाई ये अवगाना का प्रकरण देखते हुए।
यहाँ जो सूक्ष्म सूक्ष्म लिए ने यहाँ सब सूक्ष्म पर्याप्तों की जगन्य लेना, फिर उसके वो विशेष अधिक बताएंगे। क्यों भाई क्यों इतना जल्दी? हाँ शादियों में तो और ज्यादा
पहले तो खाना ही पड़ता है,
नवंबर दिसंबर की शादी होती है तो उसमें तो बहुत ही
नहीं सब लोग तो घर पे है तो तो घर की उसमें भी नहीं खाती है।
हाँ देखो देखो अभी यहाँ पर फिर पढ़ते हैं, 18 नंबर पर थे हम तो। सूक्ष्म निगोद निवृत्ति निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना है ये 18 नंबर। यह देखो ये यहाँ पर आ गए, ये 18 यहाँ पर आ जाएगा, विशेष अधिक वाला नीचे का कोठा आएगा, उससे और विशेष अधिक नीचे और नीचे चले जाएंगे। एक जीव कांड का जो टेबल अगर आंखों के सामने रखते हैं ना 188 पेज कुछ था तो उसमें वो बात क्लियर हो जाती
है। यहाँ पर अभी अपने को नया ये डालना पड़ेगा ना,
अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ा नहीं अभी तो जहाँ हमने जघन्य उत्कृष्ट की बात वो करेक्शन की ना, जघन्य निकाल दिया, उसके नेक्स्ट लाइन पढ़ती हूँ मैं पश्चात 18। हाँ उस पूर्व अवगाहना को छोड़कर और इसको ग्रहण करके यानी 18वें को ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से इसी अवगाहना को आवली के असंख्यातवे भाग से खंडित करें, यानी उसके असंख्यातवा भाग उसमें मिला दो जिसको हम विशेष अधिक कहते हैं, उसमें से एक खंड प्रमाण जब तक वह अधिक न हो जावे तब तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहना अभी सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त जीव की, अभी निवृत्ति शब्द छोड़ दो पर्याप्त रखो, तो सूक्ष्म का पर्याप्त है जीव की उत्कृष्ट अवगाहना के समान होती है। फिर इस अवगाहना को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा विचार वृद्धियां लिया 17, 18 और 19 विशेष अधिक विशेष अधिक। सूक्ष्म वायु का एक निवृत्ति पर्याप्त की यानी पर्याप्त जीवों की जघन्य अवगाहना के प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए, ये नंबर 20। देखो अगर इसको कोठे में रखना है तो जो पहले कोठे में सूक्ष्म जीव थे वही ये चौथे कोठे में आ गए। सूक्ष्म जीवों की कन्या ये ऑर्डर क्या थे, निवाते अप्रु, यहाँ पर भी निवाते अप्रु ऑर्डर वही लिखना है और एक से दूसरे असंख्यात गुना लिखने हैं, परंतु उसका नंबर हमने 17, 18, 19 अधिक्रम से लिया फिर 20 यहाँ डालेंगे, यानी 17 के बाद यहाँ 20 नंबर आएगा। जीवकांड में दो पद्धति सीखे, यहाँ 17, 18, 19 उन्होंने नंबर दिए हैं और हमने उसमें जब उसका रिटर्न लिखा है उसमें हमने ये नंबरिंग दी है, और यहाँ उन्होंने डायरेक्ट उसके उन्होंने नंबर नहीं दिए, नंबर तो हम दे रहे हैं, यानी ये 17, 18 ये नंबरिंग तो बाद में सोचेंगे, 17, 18, 19 हमने ऊपर से नीचे तक दिए, परंतु इस कोठे में सारे नाम वही है जो पहले कोठे में सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना ली थी। अब यहाँ पर्याप्तों की जघन्य है, सूक्ष्म अपर्याप्तों की जघन्य पहले कोठे में थी, चौथे कोठे में 17 नंबर पर था, पर्याप्त की जघन्य उगाना है। समझ में आती है बात? वो पहला कोठा वही चौथा कोठा है, पर्याप्तों की जघन्य है। जीव सूक्ष्म ही है, अब ये सूक्ष्म से सूक्ष्म ही लेना है तीनों कोठे में, चौथा कोठा उससे नीचे, पांचवा कोठा उससे नीचे, छठवा कोठा। चौथे में सभी पर्याप्तों की यानी सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य। निवृत्ति के निवृत्ति शब्द डाल छोड़ो, पर्याप्तों वो जीव नियम से पर्याप्त होने वाले हाँ, परंतु निवृत्ति अपर्याप्त शब्द बीच में क्यों डाला? क्योंकि अगर ये लब्धि और निवृत्ति ऐसे भेद करते तो जघन्य में लब्धि को लेना और अपर्याप्तों के उत्कृष्ट में निवृत्ति अपर्याप्तों को लेना, इसलिए निवृत्ति शब्द छोड़ दो। अभी पहले कोठे में सारे सूक्ष्म अपर्याप्तों की जघन्य थी, चौथे कोठे में सूक्ष्म पर्याप्तों की जघन्य है, उसके नीचे विशेष अधिक वालों में। अब यही पांच नाम है सारे, यही पांच नाम है, ये निवाते अप्रू ही है। अभी उनकी अपर्याप्तों की उत्कृष्ट, अपर्याप्तों की उत्कृष्ट में इस अपर्याप्तों को निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे, और ये नीचे में पर्याप्तों की उत्कृष्ट, सारे सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। पहले कोठे में भी सूक्ष्म थे परंतु अपर्याप्तों की जघन्य थी, चौथे कोठे में भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य, नीचे पांचवे कोठे में भी सूक्ष्म अपर्याप्तों की उत्कृष्ट, और नीचे छठे में सूक्ष्म पर्याप्तों की उत्कृष्ट। अब जो सेकंड नंबर का बादर वाला है ना, वो यहाँ हम यहाँ चार पांच छह हुए, वो सात आठ नौ यहाँ लिखेंगे, वहाँ हाँ वो बादर पर्याप्तों की जघन्य होगी, बादर अपर्याप्तों की उत्कृष्ट होगी, और बादर पर्याप्तों की उत्कृष्ट होगी, उसमें ये छह नाम आएंगे। ये क्योंकि वो अप्रतिष्ठित वो द्विंद्रिय के साथ लेना, इसी यहाँ है प्रतिष्ठित प्रत्येक रूप में। ख्याल में आती नहीं बात? ये बहुत आसान है रमल जी ने ये सब कोठे करने से, इसमें 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 विशेष अधिक नाम तो वही 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 होते, रिपीट होते। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, पढ़कर समझने में थोड़ा क्या पढ़ रहे हैं वो तो हाँ, ये ऐसा मेरे ख्याल में आता है, क्लैरिटी होती है। उन्नीस पर पढ़ा था ना हमने, अभी बीस पर भी आ गए हाँ, यानी हमने चार पांच छह में सूक्ष्म सूक्ष्म तो निगोद 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 देखे ना, अभी निगोद से वायु का एक पर जाना है। अब 20 नंबर नीचे से दूसरे लाइन में 20 नंबर डाला, सूक्ष्म वायु का एक निवृत्ति पर्याप्त के ने पर्याप्त जीवों की जघन्य उगाना के प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। अभी तो हमको तो सूक्ष्म सूक्ष्म ही जीव है सब, अब सूक्ष्म के पर्याप्तों की जघन्य है, परंतु यहाँ गुणकार आवली का असंख्यात्वा भाग है, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना, परंतु वो निगोद के आपस में उसके जो विशेष अधिक ले, यानी हर एक के तीन तीन लेना। अब वायु कायकों के तीन लेंगे नीवा, फिर तेज कायक के तीन ले, फिर अप कायक यानी जल कायक के तीन लेंगे, इस तरह से पृथ्वी कायक के तीन लेंगे। तीन कौन से? जैसे 17 18 19 लिए, 20 21 22 लेंगे, 23 24 25 लेंगे, इस तरह से। हाँ, पेज नंबर 44, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म का अवगाहना गुणकार आवली का असंख्यात्वा भाग है, ऐसा सूत्र में निर्देश किया है। ये हमने गुणकार निकाल दिए ना, ठीक है। दूसरे कोठे से तीसरे कोठे में, तीसरे कोठे तो भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग था, तीसरे से चौथे कोठे में आए तो भी बादल से सूक्ष्म को आए थे, आवली का असंख्यात्वा भाग था। देखो देखो हाँ, 5 से 16 देखा था हाँ, अभी 16 से 17 अवली का संख्या तो भाग, मैं 17-18-19 जाने दो, 19 से 20 आउली का संख्या तो अभागो ना, नहीं 17 से 18 अधिक, कुछ अधिक, 18 से 19 कुछ अधिक, 19 से 20 आउली का संख्या तो अभाग, हाँ हाँ 17 से 18 और 18 से 19, अभी तीन तीन छोड़कर करना है, यानी 17 18 19 से एक ही कली, एक ही वो निगोद 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 है। अब 19 से 20, 19 वाला कौन सा है, वो निगोद पर्याप्त की सूक्ष्म की पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाना थी, 19 से 20 आवली का संख्या तो अभाव होगा, है ना, फिर 20 से 21, 21 से 22 विशेष अधिक हो जाएगा, और 22 से 23 और फिर आवली का संख्या तो अभाव हो जाएगा, वो बाद में लिखेंगे हमें। जरा पढ़ लेते दो वाक्य इसमें से, देखो पेज 44, यह गुणकार सूक्ष्म जीवों में सर्वत्र कहना चाहिए, पश्चात इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से इस अवगाहना के ऊपर, इसी अवगाहना को आवली के असंख्यात्व भाग से खंडित करने पर, यानी असंख्यात्व भाग अधिक करना है ना, इसलिए उसमें से एक खंड प्रमाण बढ़ाना चाहिए, इस प्रकार बढ़ाने पर, अभी 21 नंबर पर, सूक्ष्म वायु का एक निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना होती है, यानी अपर्याप्त की उत्कृष्ट, पेज नंबर ये सॉरी नंबर 21 है ये, आपने कहाँ डाला पहला, पश्चात एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से उक्त अवगाहना को ही आवली के असंख्यात भाग से खंडित करने पर, उसमें से एक खंड प्रमाण वृद्धि हो जाने पर, यानी असंख्यात भाग वृद्धि यानी कुछ विशेष बढ़ जाने पर, अब नंबर 22 डालो, सूक्ष्म वायु का एक निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना होती है, यानी पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना 22 में, अब वायु का एक हो गए ना विशेष अधिक, निवाते अब तेज का एक, अग्नि का एक की बात होगी, पश्चात उसको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से चार वृद्धियों द्वारा, अभी बीच में चार वृद्धि होगी, बीच विशेष अधिक नहीं होगी, 23 नंबर पर सूक्ष्म तेज कायिक निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के प्राप्त होने के, पर्याप्त जीवों की जघन्य अवगाहना होने तक बढ़ाना चाहिए, पश्चात इस पर्याप्तों की जघन्य बराबर है, 23-24-25 ऐसे होगी ना, इस अवगाहना को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि द्वारा आवली के असंख्यात भाग से खंडित कर उसमें से एक खंड प्रमाण बढ़ाना चाहिए, जब तक कि 24 नंबर सूक्ष्म तेज कायिक निवृत्ति अपर्याप्त है ना, अभी यानी अपर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना होती है, पश्चात इसको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि द्वारा आवली के असंख्यात भाग से खंडित करने पर उसमें से एक खंड मात्र बढ़ाना चाहिए, जबकि वह अभी 25 नंबर सूक्ष्म तेज कायिक निवृत्ति पर्याप्त यानी पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना के समान नहीं हो जाते। अब यह हम रुकेंगे, यानी वो 23-24 और 25 ये तेज कायिकों के है, पर्याप्त की जघन्य, अपर्याप्त की उत्कृष्ट और पर्याप्त की उत्कृष्ट, यानी हमने 22 और 23 वाला गुणकार देखा था आवली का संख्या का भाग, उसके बाद 25-26 में वो बाद में बताएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे, यानी 25 से 26 वाला भी आवली का संख्या का भाग होगा, रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा।